جي. لا شكرتين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، في يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ آپ نے تلاوت سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم سورۃ النبا اب شروع کر رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الحجرات کی تفسیر پڑھنا مکمل کیا تھا، جو کہ دراصل رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے شروع کری تھی. سورہ یاسین کی تفسیر پڑھنے کے بعد سورہ حجرات شروع کری تھی، تو وہ کنٹینیو ہوتی رہی اور پچھلی کلاس میں ختم ہوئی. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ساجد نے میسج کیا تھا تفسیر کلاس سے متعلق، کہ آپ لوگوں کی کلاس میں سورہ حجرات کے بعد پھر سورہ نبا کی تفسیر ہم نے پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ نبا کی تفسیر جو ہے وہ ہماری پچھلے سال کی جو عامہ کی کلاس تھی اس کے اندر تیسواں پارہ جو ہم نے پڑھایا نا تفسیر اس کی، تو اس میں سورہ نبا کی تفسیر رہ گئی تھی. تو اس پورے بیچ کی سورہ نبا کی تفسیر چونکہ ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو ابھی پہلے ہم مکمل کر لیں گے تاکہ تیسواں پارہ ان کا مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم یعنی سپوزلی ایک انداز میں رینڈملی ہم کوئی سورت قرآن پاک میں سے اٹھا کر کے اس کی پھر تفسیر پڑھنا شروع کریں گے. تو وہ اگزیکٹلی میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ نیکسٹ کون سی صورت ہوگی، لیکن وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر سورہ قاف لکھا تھا تو شاید سورہ قاف ہو جائے، یا ہو سکتا ہے سورہ دہر ہو جائے، یا کوئی اور جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا انشاءاللہ اس کے اوپر. اچھا، تو اس وجہ سے اسپیشلی جو یہ بیچ ہے جس نے ابھی تک سورہ نبا کی تفسیر بالکل نہیں پڑھی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پابندی سے اس کلاس کو اٹینڈ کر لیں. اس کے اندر ہم نے صرفی اور لغ اور نحوی تحقیق وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، بیکاز یہ جو سنڈے کی کلاس ہے یہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف کلاس ہے. یہ عمومی طور پہ نہ صرف عالمات کے لیے ہے، جو یعنی جو خواتین عالمہ بن رہی ہیں یا بن چکی ہیں، بلکہ یہ ایسی خواتین کے لیے بھی ہے جو کہ کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ صرف ذکر و سلوک کے راستے کے اوپر چل رہی ہیں اور اس فقیر کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اس میں چونکہ دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں اس کلاس کے اندر، اس وجہ سے ہم صرفی اور نحوی تحقیق وغیرہ اس میں نہیں پڑھیں گے. البتہ کسی خاص لفظ کے بارے میں تھوڑی بات اگر کرنی پڑ جائے کسی وجہ سے تفسیر کی کے سمجھانے کی نیت سے تو وہ اور بات ہے. تو سورۃ النبا کی تلاوت ہم نے کری, اب اس کے ترجمہ اور خلاصہ تفسیر سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عم یتساءلون, تو چونکہ اس کا پہلا لفظ عمّا ہے اس وجہ سے اس سورت کو سورہ عمّا بھی کہتے ہیں, اور چونکہ یہ تیسویں پارے کا پہلا لفظ عم ہے تو اس وجہ سے تیسویں پارے کو عمّا پارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پارے کا نام جو ہے وہ اس پارے کے اندر جو پہلا لفظ ہے اس سے پڑ جاتا ہے, تو عمّا پارہ اسی وجہ سے تیسویں پارے کو کہا جاتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہم اس کو اماں پارا کہتے تھے کیونکہ اماں کا کوئی تعلق ہے اس پارے کے ساتھ, امی یعنی امی اماں والی اماں, لیکن وہ اماں ہے عین سے. مکی صورت ہے, یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو خلاصہ تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیان القرآن سے نقل فرمایا ہے تو اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ عمّا یتساءلون کا ترجمہ کیا بات پوچھتے ہیں یہ لوگ آپس میں, یہ لوگ آپس میں یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں آپس میں کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ, یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کفار جو ہیں مشرکین مکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے, جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالق مانتے تھے, حتیٰ کہ رازق بھی مانتے تھے, لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بتاتے تھے جو ان کے عقائد کے مطابق نہیں ہوتی تھی ہر اس بات کا انکار کر دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان لوگوں کو قیامت کا یاد دلایا کہ بھئی تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور تم سے حساب کتاب ہوگا, تو چونکہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آ رہی تھی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا, عداوت تھی, دشمنی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کا انکار کرتے تھے. حتیٰ کہ کچھ ایسی بھی جو کہ یہ پہلے سے جانتے بھی تھے نا, تو ضد میں آ کر کے ان کا بھی انکار کر دیتے تھے. تو قیامت کا بھی جو تصور تھا یہ بھی کوئی پہلی دفعہ ان کے سامنے نہیں پیش کیا جا رہا تھا, ان کو یہ باتیں بھی معلوم تھیں لیکن یعنی ماننے سے انکار کر دیتے تھے. جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر جو ایمان اور اسلام وغیرہ کی بحث پڑی تھی نا, اس میں یہی تھا کہ جی صرف علم ہونا کسی بات کا وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو ماننا بھی ہوگا اور اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا, فقط علم سے نجات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اگر ان کو قیامت کا پتہ تھا بھی تو بھی اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. تو بریکٹس میں ان لوگوں کو کیسے ڈیفائن کیا, قیامت کا انکار کرنے والے. ٹھیک, باقی ترجمہ جو کہ انڈر لائن ہوتا ہے نا وہ ترجمہ ہوتا ہے, اور پھر بغیر انڈر لائن کے بلکہ انڈر لائن اوور لائن اوپر جو سطر لگی ہوئی ہے بینس سطر, سطر کہتے ہیں لائن کو. تو خلاصہ تفسیر میں جو الفاظ بینس سطر ہیں یعنی سطر کے نیچے ہیں وہ ترجمہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سطر کے نیچے جو نہیں ہے وہ تفسیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سطر کے نیچے ہے یہ کا لفظ, پھر اس کے بعد قیامت کا انکار کرنے والے, یہ تفسیر ہوئی. پھر اس کے بعد ترجمہ کیا ہے کہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں, یتساءلون سوال کرتے ہیں, حال دریافت کرتے ہیں. عن النبأ العظیم, عن النبأ العظیم اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے واقعے کا حال, نبا کہتے ہیں خبر کو اور عظیم یعنی بہت بڑی خبر. ٹھیک ہے, تو جو بہت بڑی خبر ہوتی ہے وہ کسی بڑی چیز کے متعلق ہی ہوتی ہے, چھوٹی چیز کے متعلق خبر بڑی خبر نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کی ہنڈیا جل گئی, رائٹ, کچن کے اندر ہنڈیا جل گئی, تو ہنڈیا جل گئی کی خبر جو ہے وہ باہر جا کر کے کسی آپ شخص کو سنائیں گے تو اس کو آپ بڑی خبر نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ اس کے لیے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہنڈیا جل گئی بھائی آپ کے لیے ہوگی, وہ ہنڈیا کی امپورٹنس زیادہ اس کے لیے تو نہیں ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبأ العظیم کہہ رہے ہیں, यानी जो खबर सुनाने वाला है ना, ठीक है, यानी अल्लाह ताला का जो कलाम है, ये अल्लाह ताला का कलाम है ना, तो अल्लाह ताला अजीम कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला अजीम कह रहे हैं, तो फिर उससे ज्यादा अजीम तो कोई चीज नहीं हो सकती है ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो अगर किसी चीज को बड़ा कहे तो वो वाकई बड़ी चीज होती है। छोटा बच्चा आकर के किसी चीज को बड़ा कहे, मेरा खिलौना टूट गया, राइट, तो छोटे बच्चे की कही भी बात तो बड़ी नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो खुद ही छोटा है। तो अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो अल्लाह ताला जिस चीज को बड़ा कह रहे हैं वो वाकई बड़ी है, यानी कयामत। अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून मुख्तलिफून, ठीक है, तो ये कयामत क्या चीज है, वो जिसके अंदर ये लोग इख्तलाफ करते हैं, ठीक है, इख्तलाफ करते हैं, तो किससे इख्तलाफ करते हैं, अहले हक के साथ इख्तलाफ करते हैं। अहले हक कौन होते हैं, मानने वाले, इकरार करने वाले, यानी मुसलमान, ठीक है, ये अहले हक बन जाते हैं, सही। तो नबी अलैहिस्सलाम की जिसने भी बात मान ली वो अल्लाह के नजदीक अहले हक हो गया, तो ये लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं। मुराद कयामत है, और दरियाफ्त करने से मुराद बतौर इनकार के दरियाफ्त करना है, यानी इल्म हासिल करने के लिए दरियाफ्त नहीं कर रहे कि जरा हमें बताओ कयामत के बारे में, ताकि हम भी कुछ सुने और हमें भी उसके ऊपर ईमान आ जाए, इस नियत से नहीं दरियाफ्त कर रहे, बल्कि इनकार की नियत से दरियाफ्त कर रहे हैं। और मकसूद इस सवाल जवाब से अजहान का इधर मुतवज्जह करना और तफसीर बादल इबहाम से इसका एहतमाम शान जाहिर करना है, ठीक है, यानी अल्लाह ताला जो इनके सवाल जवाब का यहाँ पे तذکرہ कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली जो कुरान का रीडर है उसके रीडर को इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि जी एक बहुत बड़ी चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ताकि कारी कुरान जो है ना उसका जहन इस तरफ मुतवज्जे हो जाए, ठीक है ना। भाई जब हम बातचीत करते हैं तो जब हम कोई इंपॉर्टेंट चीज अपने मुखातब को बताना चाहते हैं तो उससे पहले हम कुछ अल्फाज ऐसे कहते हैं ताकि उसकी तवज्जो मेरी तरफ मायल हो जाए, ठीक है ना, दीगर जगहों से उसकी तवज्जो हट जाए और मेरी तरफ मायल हो जाए, ठीक है। अजहान जहन की जमा है, जहन तो समझते हैं ना, दिमाग, जहन, ये उसकी जमा है। तो अल्लाह ताला भी इसी तरीके से अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अजीम ये बात फरमा करके हमारे जहनों को मुतवज्जे कर रहे हैं। और तफसीर बादल इबहाम का मतलब क्या, कि इबहाम कहते हैं उन चीजों को जो कि मुबहम होती हैं, अनक्लियर, ठीक है, इबहाम मीन्स अनक्लियरिटी, मुबहम चीजों, यानी अल्लाह ताला ने पहले एक मुबहम बात करी, अम्म यतसाअलून अनिन नबाइल अजीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, ये वो चीज है जिसके बारे में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, तो अभी तक बात क्लियर नहीं करी है, ठीक है, कि किस चीज के बारे में ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनक्लियरिटी अल्लाह ताला ने रखी है ना, तो ये अनक्लियरिटी किस लिए रखी है, बाद में तफसीर करेंगे, अभी तफसीर नहीं कर रहे, बाद में इसकी तफसीर करेंगे इस चीज के बारे में, नबेल अजीम के बारे में। तो ये भी क्यों किया जाता है, ये भी इसीलिए किया जाता है कि एहतमाम शान के लिए, एहतमाम शान जाहिर करना होता है, यानी एक बहुत ही अहम चीज मैं आगे बयान करने वाला हूं, तो शुरू में तमहीद बांधते हैं, तमहीद, तो जो तमहीद होती है ना, ये तमहीद जो होती है मुबहम होती है, अनक्लियर होती है, ठीक है ना। आपने भी कभी अगर इस तरह से किसी के को कोई कॉन्सेप्ट बयान करना करने की कोशिश करी होगी, तो हो सकता है आपने भी इस तरीके से तमहीद बांध करके बात करी होगी। कभी ऐसा होता है कि हम जो हैं वो तमहीद जरा लंबी बांध जाते हैं, है ना, तमहीद हमारी लंबी हो जाती है, तमहीद समझते हैं ना सर, तमहीद हमारी लंबी हो जाती है, तो अगला बंदा जो है ना फिर उसका सब्र जो है वो थोड़ा खत्म होने लगता है, तो वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि भाई अब असल बात की तरफ आओ, गेट टू द पॉइंट। वो क्यों कहता है गेट टू द पॉइंट, वो क्यों कहता है असल बात की तरफ आओ, इसलिए क्योंकि जो तमहीद होती है वो अनक्लियर होती है, राइट, अभी असल बात हमने शुरू ही नहीं करी, तो अगला बंदा सोच रहा है कि भाई ये क्या कहने वाला है अभी, ठीक है ना, बिकॉज तमहीद मुबहम होती है, अनक्लियर होती है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी अल्लाह ताला तमहीद बांध रहे हैं, और तमहीद मुबहम होती है, ठीक है। लेकिन तमहीद का मकसद क्या होता है कि भाई मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं, तो पहले से मैं तुम्हारी थोड़ी सी जहन साजी कर रहा हूं, तुम्हारे जहन को इस तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने पहले जहनों को मुतवज्जे किया, तमहीद बांधी, और उसके बाद फिर आगे उनके इख्तलाफ का बेवजह और बातिल होना बयान किया गया है कि जैसा ये लोग समझते हैं कि कयामत नहीं आएगी, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि कयामत आएगी। पुराने जमाने में कहते थे आवेगी, तो अब हम आवे नहीं कहते बल्कि हम आएगी बोलते हैं। तो फरमाया कल्ला सयालमूना थुम्मा कल्ला सयालमूना, हरगिज नहीं ये अब जान लेंगे, फिर हरगिज नहीं बल्कि अनकरीब ये लोग जान लेंगे, कि इनको अभी मालूम हुआ जाता है। लिखते हैं खुलासा तफसीर में कि इनको अभी मालूम हुआ जाता है, यानी जब दुनिया से रुखसत होने के बाद उन पर अजाब वाक़ होगा, तब हकीकत और हकीकत कयामत और हकीकत और हकीयत कयामत की मुनकशिफ हो जाएगी। यानी हकीकत तो आपको पता ही है, रियलिटी, और हकीयत का मतलब सच होना, हक होना कयामत का, वो इनके ऊपर खुल जाएगा, मुनकशिफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मौत का वक्त आएगा, फिर क्या होता है कि आलम बरजख की चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी वो सारी चीजें जिनका कि हम इस दुनिया में इनकार कर रहे होते हैं, काफिर इनकार कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए कभी भी, राइट। तो जिन चीजों का इनकार कर रहे होते हैं, फरिश्तों का, अजाब का, राइट, वो गले का कहते हैं ना घुंघरू बजना, घुंघरू बजना जब शुरू होता है ना, यानी जान जो है वो निकलनी शुरू होती है, उसी वक्त से ये सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो कयामत का की जो रियलिटी है उसको खुलने में कितनी देर लगेगी, उतनी देर लगेगी जितनी के हमारी मौत में देर है, और हमारी मौत में कितनी देर है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। किसी से पिछले दिनों बात हो रही थी कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी मौत की, ठीक है ना, कि हम मर जाएंगे, तो वो 30 साल बाद मरेंगे या 30 मिनट बाद मरेंगे, ठीक है ना। हम 30 साल बाद मरेंगे या 30 मिनट बाद मरेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, राइट। दोनों का इम्कान बराबर है कि हमने अभी मर जाना है, या हमने अगले साल मरना है, या हमने 2 साल के बाद मरना है, या हमने 20 साल के बाद मरना है, सब बराबर है। ना तो किसी को पता है कि वो यानी 20 साल बाद मरेगा, ना किसी को पता है कि वो 20 मिनट के बाद मरेगा, ठीक है। तो जैसे ही मौत आई, चाहे वो 1 मिनट के बाद आए, 2 मिनट के बाद आए, 10 मिनट के बाद आए, राइट, या 10 साल के बाद आए, वैसे ही ये सारी हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इसमें और हम और हमारे दरमियान क्या चीज रुकावट है, मौत रुकावट है, और कोई चीज रुकावट नहीं है, ठीक है। और मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, ठीक है ना। जैसे कि पिछले दिनों जब या आजिज और फैमिली यहाँ अमेरिका आए थे, तो आप लोगों ने वो खबरें सुनी होंगी, चंद दिनों के बाद ही यहाँ पर क्या हुआ था, अमेरिका जैसे सेफ इलाका, सो कॉल्ड, जो बड़ा यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, और बड़ी यहाँ पे आज़ादी भी है, और बड़ी जो है वो कोई सिविल वॉर भी कोई नहीं हो रही है, और यू नो सो कॉल्ड जो है वो बड़ी सेफ्टी, राइट। लेकिन क्या हुआ, वॉलमार्ट, राइट, वॉलमार्ट जहाँ पे लोग अपने ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, राइट, दूध दूध अंडा खरीदने के लिए जाते हैं, तो वॉलमार्ट में लोग जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे, और एक खर दिमाग शख्स आया और उसने अपने असॉल्ट वेपन से लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो पता नहीं कितने लोग मर गए थे उस वाले एक के अंदर, 30 लोग मरे थे या कितने, तो वो कोई प्लान करके आए थे घर से कि जी अब हम मरने के लिए जा रहे हैं, राइट। किसी का इरादा था उस वक्त में मौत की को गले लगाने का, किसी का इरादा था भाई, वो तो दूध अंडा खरीदने के लिए आए हुए थे ना, लेकिन वापस नहीं गए अपने घर। तो उन लोगों को भी जिस तरह से मौत का नहीं पता था ना, उसी तरीके से हमें भी नहीं पता मौत का, हमें भी नहीं पता कि मौत कितने लम्हों के बाद हमारा इंतजार कर रही है खड़े हुए, ठीक है ना। हमें तो इतना भी नहीं पता ये क्लास भी पूरी पढ़ा सकेंगे, पढ़ सकेंगे कि नहीं पढ़ सकेंगे, तो ये तो हकीकत है हमारी, ठीक है ना। तो सारी हकीकत जो है वो फिर कयाम मौत के साथ मुनकशिफ हो जाएगी, और हम फिर मुकर्रर कहते हैं, रिपीट करके कहते हैं कि जैसा ये लोग समझते हैं कि कयामत नहीं आएगी, हरगिज नहीं, कल्ला सयालमून, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि आएगी और इनको अभी मालूम हुआ जाता है। ठीक है, यालमून का मतलब ये अभी जान लेंगे, मालूम हो जाएगा इनको। और चूंकि वो लोग इसको मुस्तबाद या महाल समझते हैं, मुस्तबाद उस चीज़ को कहते हैं जो कि बड़ी दूर है, यानी अभी तो जी अभी तो मौत बहुत दूर है जी, मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, बचपन में वो नऊज़ुबिल्लाह गाना सुना करते थे ना, वो कौन क्या, अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक है, तो अब हम यही समझते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, हालांकि हम अपने बच्चों के बारे में क्या कह रहे होते हैं बार बार, ओह कितनी बड़ी हो गई है, कल कितनी छोटी थी, अभी आए ना इतने कुछ रिश्तेदारों से जो है वो बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है यहाँ पर, तो वो देख करके हमारे बच्चों को कह रहे हैं ओह ये तो इतनी छोटे थे, इतने बड़े हो गए, राइट, इतने बड़े हो गए, इतनी लंबी हो गई। ठीक है ना, तो वो लंबी हो गई, वो बड़ी हो गई, और हम वहां के वहीं खड़े हुए, है ना। बिकॉज इंसान अपने आप को भूल जाता है कि भाई जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो साथ साथ मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, राइट, मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूँ ना, मेरी उम्र भी तो खत्म हो रही है ना, खाली बच्चे बड़े नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन हम यही समझते हैं कि जी मौत तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो चूंकि वो लोग इसको मुस्तबद या महाल समझते हैं, आगे इसके इम्कान और वुकू का बयान है कि इसको महाल समझने से हमारी कुदरत का इनकार लाजिम आता है, यानी मौत को और कयामत को महाल समझना, ठीक है, कि बहुत मुश्किल काम है जी कयामत का कायम होना, तो इससे तो हम अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हैं ना, और हमारी कुदरत का इनकार निहायत अजीब है। अजीब बात है कि ये लोग अल्लाह की कुदरत का इनकार करते हैं, क्योंकि अब इसकी वजह अल्लाह ताला बयान करते हैं। देखें अल्लाह ताला कितने अजीम है, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है, अल्लाह ताला और हम में कोई मुनासिबत ही नहीं, अल्लाह ताला खालिक है हर चीज के, और हम तो एक सुई भी नहीं बना सकते, राइट, तो क्या मुनासिबत है हम में और अल्लाह में, क्या जरूरत है अल्लाह को हमसे बात करने की। ठीक है ना, चलो तो भाई अल्लाह ताला बात करते हैं तो बात करने में अल्लाह ताला को हमें हुक्म देने चाहिए खाली, ठीक है ना, हमें तो ये समझ में आता है जो बड़े होते हैं तो बड़े जो है वो हुक्म देते हैं, ठीक है ना, यू बेटर डू इट, ऐसे ही कहते हैं ना अंग्रेजी में, ठीक है, तुम्हारी खैर इसी में है कि मेरी बात मान लो, आगे से रीजन नहीं बताते, ठीक है ना, जैसे शौहर होते हैं कुछ माशाल्लाह, ठीक है ना, वो जो उस किस्म के शौहर होते हैं, वो हर किस्म के शौहर होते हैं, लेकिन एक खास किस्म होती है शौहर की, बीवी से क्या कहती है, यू बेटर डू इट, यू बेटर डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो, आगे से सवाल ना करो, ठीक है ना, आगे से कुछ पूछो ना, क्यों, इसलिए कि जी मैं शौहर हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे ऊपर कवामून अल्लाह ताला ने बनाया, राइट, कायम मुझे मुझे बड़ा बनाया, तो मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें समझाने की, रीजंस देने की, ठीक है ना, बस हुक्म मानो मेरी। लेकिन अल्लाह ताला से बड़ा कोई हो सकता है, अल्लाह ताला से ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है, और हमसे ज्यादा कमजोर कोई हो सकता है अल्लाह के नजदीक, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ हुक्म नहीं देते, चंद हुक्म भी देते हैं, बहुत ज्यादा हुक्म भी नहीं दिए अल्लाह ताला ने, थोड़े से हुक्म दिए हैं कुरान के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला फिर उसके बाद कितना समझाते हैं, कितनी लॉजिक बयान करते हैं, कितनी रीजनिंग बयान करते हैं, ठीक है ना, तो वो रीजनिंग क्या क्या बयान कर रहे हैं कि अलम नजअल अर्ध मिहादा, कि क्या हमने नहीं बनाया जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना, यानी जिस तरह फर्श होता है कि जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं या फर्श के ऊपर हम लेटते हैं, तो उसी तरीके से पूरी जमीन जो है वो हमारे लिए फर्श है। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने बनाया औताद, औताद वतद की जमा है, वतद कील को कहते हैं, नेल NAIL, ठीक है, नेल कील जो हम ठोकते हैं अपने हथौड़े से, तो पहाड़ों को जमीन की मीखें नहीं बनाया, यानी मिसल मीखों के बनाया, मीख जो है वो जरा, और कील का जो है वो जरा एक मुश्किल वर्ड है उर्दू में, मीख, तो मीखें नहीं बनाया यानी मिसल मीखों के बनाया, मिसल की यानी एग्जैक्टली कील नहीं बनाया जैसे कि हम कील इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कीलों के जैसा बनाया, जैसे किसी चीज में मीखें गाड़ देने से वो चीज अपनी जगह से नहीं हिलती, इसी तरह जमीन को पहाड़ों से मुस्तकर कर दिया, ठहरा दिया, मुस्तकर कहते हैं ठहरने की जगह को, बेस को, ठीक है, तो जमीन को जो है ना वो ठहरा दिया, मुस्तकर कर दिया पहाड़ों से, और इसकी तहकीक सूरह नहल में गुजर चुकी है, तो सूरह नहल की तहकीक जब तफसीर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इसको भी दोबारा पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा या कभी पढ़ा हो, ये साइंटिफिक मेडिकल्स ऑफ द कुरान वाली जो किताबें होती हैं, तो उनमें उन्होंने तस्वीरों से खास तौर पर डेमोन्स्ट्रेट किया होता है कि जो पहाड़ हमें ऊपर नजर आते हैं जमीन के, तो जितना ऊपर नजर आते हैं उससे 3 गुना जो है वो जमीन के नीचे होते हैं। तो वो जमीन में ना बाकायदा पैवस्त होते हैं, गड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर आप कील को ठोकें तो कील का बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपको बाहर नजर आता है, लेकिन उसका जो असल हिस्सा होता है वो नीचे होता है, चीज के अंदर चला जाता है, और चीज के अंदर जाने से वो चीज जो होती है ना वो जुड़ जाती है। उसी तरीके से पहाड़ों का असल हिस्सा नीचे होता है, और वो जो है जमीन के मुख्तलिफ जो प्लेट्स वगैरह होती हैं तो उनको जो है ना वो जोड़ने का काम करते हैं। है तो इसके आगे फरमाते हैं कि और वह खलकनाकुम अजवाजा, और तुमको बनाया हमने जोड़े जोड़े, जौज, अजवाज जौज की जमा है, और जौज जो है वो स्पाउस को, जैसे अंग्रेजी में स्पाउस कहते हैं, शौहर या बीवी, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, जौज होता है। तो तुम्हें जौज में बनाया यानी जोड़े बनाए तुम्हारे। तो उसकी तफसीर में हजरत लिखते हैं कि इसके अलावा हमने और भी दलाइले कुदरत जाहिर फरमाए, चुनाचे हम ही ने तुमको जोड़ा जोड़ा यानी मर्द और औरत बनाया। अच्छा, मर्द और औरत का बनाना जो है ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हम ही ने तुम्हारी नींद को राहत की चीज बनाया। राहत यानी तुम्हारी थकन दूर करने के लिए सुबाता, सुबात बनाया। अच्छा, बाकी इसकी तफसील नहीं लिखी है, तो अभी हम देखेंगे आगे बात के मसाइल के अंदर। वजअलना लैला लिबासा। अच्छा, ये जो हम सूरत पढ़ रहे हैं ना, जरा हम वैसे तो हकीकत ये है कि आज इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो सकी है इस क्लास के लिए, तो इस वजह से जो लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको पढ़ने पर ज़्यादा एम्फोसिस होगा, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। और दूसरी बात यह है कि हमने वैसे भी इस सूरत को ज़रा जल्दी निकालना है, ताकि फिर हम उन सूरतों को पढ़ें जिनको कि अक्सर आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक, वरना इस सूरत को तो आप में से अक्सर जो है वो पहले पढ़ चुकी हैं हमारे साथ। अच्छा, वजअलना लैला लिबासा, तो लैल के बारे में क्या बताया कि हमने ही रात को पर्दे की चीज बनाया, लिबास। ठीक है, लिबास क्या होता है? पर्दे की चीज। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे तर्जुमा किया है, तो अगर लिबास जो है वो पर्दा ना कर रहा हो फिर फायदा क्या है ऐसे लिबास का? ठीक है ना, या तो इतना छोटा हो कि उससे बदन जो है छुपता ही ना हो, या ये कि लिबास हो तो बड़ा, पूरा बदन जो है वो छुपा तो लेता हो लेकिन बदन के जो जो खाल हैं वो उस लिबास से झलकते हो, तो ऐसा भी जो है वो फिर लिबास नहीं कहलाता। तो रात जो है उसको अल्लाह ताला ने लिबास बनाया। ठीक है, तो रात के अंदर कुछ नजर आता है? कुछ भी तो नहीं नजर आता, अंधेरा है ना। असल रात तो अंधेरे वाली रात होती है, ये जो आजकल की स्ट्रीट लाइट्स और आजकल की जो रातें होती हैं, तो वो रातें कोई थोड़ी होती हैं। क्यों नहीं रातें होती हैं? इसलिए कि उसमें सब कुछ नजर आ रहा होता है, तकरीबन सब कुछ नजर आ रहा होता है ना, लाइट्स की वजह से, आर्टिफिशियल लाइटिंग की वजह से। लेकिन अगर आप किसी डेजर्ट में चले जाएं, किसी आप जंगल में चले जाएं, और वहां पर जो जो रात की असल कैफियत है, तो उस रात के अंदर आपको हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ठीक है ना, ये नहीं है कि बस आपको जो है वो हाथ की, जैसे आप अपने हाथ देखें तो रात में आपको हाथ का कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि आपको हाथ जो है वो काला नजर आएगा रात में, ऐसा होता है। अगर आप रात यानी किसी रेगिस्तान की रात में चली जाएं जिस रात में चांद की रोशनी भी ना हो, ठीक है ना, चांद भी ना हो उस रात में, तो उसमें आप अगर अपने हाथ को देखें, ठीक है, तो क्या आपको अपना हाथ जो है वो काला नजर आएगा? नहीं, बल्कि वो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि काला नजर नहीं आएगा, बल्कि वो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा। आपके यानी हाथ की स्किन का जो कलर है ना, सिर्फ ये नहीं है कि वो कलर चेंज हो करके नजर आएगा, बल्कि सिरे से वो हाथ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो लिबास का ये मतलब है। लिबास का मतलब ये नहीं है कि बस जो है वो आपने अपने जिस्म के ऊपर एक काली चीज चढ़ा ली, ठीक है, या ब्राउन चीज चढ़ा ली या ग्रीन चीज चढ़ा ली, ठीक है ना, और पूरे जो है ना वो ऊपर से लेके नीचे तक आपने एक चुस्त, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चुस्त लिबास, चुस्त लिबास आपने चढ़ा लिया अपने बदन के ऊपर, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, आपके बदन की जो स्किन थी वो स्किन अगर किसी कलर की थी, ब्राउन कलर की थी या गोरे कलर की थी थोड़ी, ठीक है ना, तो उसका कलर चेंज हो गया ना, ठीक है ना। अब वो जो है वो काली नजर आ रही है, अब वो जो है वो ग्रीन नजर आ रही है, क्योंकि आपने ग्रीन लिबास पहना हुआ है, ठीक है। तो लेकिन नजर तो आ रही है ना, ठीक है ना, आपका पूरा बदन जो है वो नजर तो आ रहा है ना उस ग्रीन रंग, बस उसका रंग चेंज हो गया, बिकॉज उस रंग का आपने कपड़ा अपने बदन के ऊपर चढ़ा लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो कपड़ा चढ़ाया है ये लिबास नहीं कहला सकता, ये लिबास नहीं कहला सकता, इसलिए कि इस कपड़े से उस बदन के खदो खाल नुमाया हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, खदो खाल नुमाया हो रहे हैं, तो वो लिबास कहलाने के काबिल नहीं है। लिबास तो वो होगा कि जिससे के खदो खाल भी नुमाया ना हो, रात जैसा काम करे वो लिबास, समझ रही हैं, रात जैसा काम करे। वजअलना लैला लिबासा, लिबास ऐसा होना चाहिए जैसी रात होती है, ठीक है, कि जिसके अंदर सिर्फ रंगत चेंज नहीं हो जाती किसी चीज की, बल्कि वो चीज ही गायब हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से शरीयत ने जो पर्दा का पहला दर्जा करार दिया है वो क्या है, जरा आप जवाब दें। खवातीन इतनी सारी हैं, पर्दे के काम तो मालूम होने चाहिए ना, खवातीन के लिए फर्ज है पर्दा, तो शरीयत में पर्दा क्या होता है जी? शरीयत में हिजाब बिल बुयूत, घर में हिजाब, ठीक है, घर का हिजाब, हाँ, वजूद ही ना दिखे, सिरे से गायब ही हो जाए औरत, घर में चली गई, अब बाहर वाले उसको देख ही नहीं सकते, गायब हो गई पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो यह है असल हिजाब, यह है असल लिबास, जैसे रात, रात में बंदा ही गायब हो गया पूरा का पूरा, खदोखाल भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दर्जा है कि जी जब किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, चाहे वो रिश्तेदारों से मिलना हो, चाहे वो उमरा करना हो, चाहे हज करना हो, चाहे किसी दीनी मजलिस को अटेंड करना हो, तो उसके लिए अगर घर से निकलना है तो फिर दूसरा दर्जा हिजाब का आता है, जो कि हिजाब बिल बुरका कहलाता है, ठीक है। और बुरका जो है वो चुस्त लिबास को नहीं कहते, ठीक है ना, वो ढीला ढाला एक ऐसा लिबास है जिससे कि कम वजूद तो नजर आएगा, वजूद को अब नहीं छुपा सकते, ठीक है, वरना वैसे तो पुराने पुराने जमाने में तो वजूद को फिर भी छुपाते थे, क्योंकि उस औरत जो है वो पालकी के अंदर बैठ करके निकलती थी, आज के दौर में वो गाड़ी पालकी का किरदार अदा करेगी, लेकिन बहरहाल गाड़ी से कभी ना कभी तो निकलना पड़ता है ना, वो गाड़ी जो है वो घर के अंदर तो नहीं लेके जा सकते, खुसूसन आज के दौर की गाड़ियां, पालकी तो चलो पुराने जमाने में फिर भी घर के अंदर ले जा सकते थे, अब तो नहीं ले जा सकते, तो इस वजह से औरत को बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तो उसका वजूद तो नजर आ जाएगा, लेकिन वजूद जो है वो बुर्के के अंदर होना चाहिए, उसके खदोखाल नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो फिर रात को फरमाया कि वो जो अल्ला लैला लिबासा, कि हमने रात को पर्दे की चीज बनाया, वो जो अल्ला नहारा माशा, ठीक है, कि हमने दिन को कमाई करने का जरिया बनाया, कमाई करने का वक्त बनाया, ठीक है। मायशुन, जो सर्फ पढ़ चुके हैं तो उनको पता है कि ये जो है वो इस्म जर्फ कहलाएगा, यानी ये वो वक्त है, नहार जो है वो वक्त है कि जिसके अंदर मईशत का काम किया जाता है, मायशुन, ठीक है, इस्म जर्फ का सीवा। तो हमने दिन को माश का वक्त बनाया, फिर क्या फरमाया, व बनैना फौकुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर बनाए, तुम्हारे ऊपर बनाए 7 मजबूत चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं खुलासे तफसीर में, कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, बस इतनी तफसीर है फिलहाल, चलो फिर मारूफ मसाइल में कुछ और आएगा तो हम उधर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लिनुखरिजा, नहीं सॉरी, वजअलना सिराजं वहाजा, और हमने बनाया एक चिराग चमकता हुआ, सिराजं वहाजा, अमेरिका के एक बहुत मशहूर अफ्रीकन अमेरिकन स्कॉलर हैं, अब तो वो काफी ज़यीफ हो गए हैं, सिराज वहाज उनका नाम है, बहुत ज़्यादा मशहूर, और माशाल्लाह ये उस जमाने के स्कॉलर्स में से गुजरे हैं, यानी उस जमाने के स्कॉलर हैं जिसमें के यानी आजकल जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पर, उस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था, ठीक है। तो बड़े ही यानी पाबंदे शरीयत और सुन्नत, शरीयत और सुन्नत के बड़े पाबंद ये हैं, अभी तक उन्होंने जिंदा हयात हैं और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो सिराज वहाज उनका नाम है, न्यूयॉर्क में होता है। वो जालना सिराज वहाज, हमने एक चमकता हुआ चिराग बनाया। अच्छा, मुराद आफ्ताब है यानी सूरज, कौली ताला वजालना शमसा सिराजा, जैसे कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर फरमाया कि हमने सूरज को ही सिराज बनाया, चिराग। وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، और उतारा हमने निचोड़ने वाली बदलियों से पानी का रेला। अच्छा, और थोड़ा सा तफसीर में लिखते हैं इसका तर्जुमा कि हम ही ने पानी भरे बादलों से बहुत पानी बरसाया ताकि हम इस पानी के जरिए से गल्ला और सब्जी और गुंजान बाग पैदा करें, और इन सब से हमारा कमाल कुदरत जाहिर है, फिर कयामत पर हमारे कादिर होने का क्यों इनकार किया जाता है। ये बयान था इम्कान का, आगे वकूअ का जिक्र है कि ठीक है। तो अब ये सब जो बातें हो रही थी कि वो अच्छा, ये तो वो अनजलना मिनल मुसरात मान सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बा व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा, ठीक है, ताकि हम निकालें इसमें से हब्बन व नबातन, ठीक है। हब जो है वो दाने को कहते हैं, तो जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे वीट का ग्रेन है, राइस का ग्रेन है, बार्ले का ग्रेन है, जो भी यानी जो दानों की शक्ल में चीज़ें होती हैं, वो सब के सब जो है वो हब्बन के अंदर कवर हो गया, और नबातन के अंदर जो पत्ते वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम सब्जी कहते हैं, तरकारी भी लोग कहते हैं, तो वो नबातन के अंदर कवर हो गई। यानी जो बादलों से पानी निचोड़ 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 करके ज़मीन तक पहुंचाया जाता है, तो उससे फिर फायदा क्या होता है जमीन को, कि जमीन से फिर हब निकलते हैं और नबात निकलते हैं, और जन्नातन अल्फाफा यानी बाग निकलते हैं, और इतने गहरे घने बाग निकलते हैं कि उनमें जो है वो सूरज की रोशनी तक जो है वो उनको वो ब्लॉक कर देते हैं। यानी जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर वाले जो इलाके हैं, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका के अंदर कीनिया वगैरह के जो इलाके हैं, तो वो इक्वेटर के ऊपर आते हैं ना, बाकी तो इक्वेटर जो है वो समंदर के ऊपर आता है। और फिर आप जो है वो अगर साउथ अमेरिका में चले जाएं तो साउथ अमेरिका के कुछ इलाके हैं जिनके जो कि इक्वेटर के ऊपर गुजरते हैं, जहाँ पर अमेजोन फॉरेस्ट है। तो ये जो इलाके हैं इनके ऊपर इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि इन बारिशों से जो जंगल उगते हैं वो जंगल इंतहाई डेंस होते हैं, बहुत ही घने जंगल होते हैं, और ऐसे होते हैं जैसे कि लिफाफा होता है ना, लिफाफे का एक तह जो है वो दूसरे तह के ऊपर चढ़ाते हैं ना। अगर आप कोई कागज लें, प्लेन कागज लें, और उस प्लेन कागज से आप लिफाफा बनाएं, माशाल्लाह आप खवातीन हैं, आपने खुद भी बनाए होंगे और बच्चियों को सिखाए भी होंगे, इस तरह के काम बच्चियां बहुत करती हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट के तहत। तो लिफाफा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इधर से फोल्ड किया, फिर लेफ्ट से फोल्ड किया, फिर नीचे से फोल्ड किया, फिर ऊपर से फोल्ड किया, ये लिफाफा बन गया। यानी फोल्डेड, एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, हर सिमत दूसरे सिमत से चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो जंगल होते हैं, ये जंगल भी जो होते हैं, इनके पत्ते एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए होते हैं, गडमड हुए हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं कि ये लिफाफे की मानिंद होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो सूरज की रोशनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है ऊपर, वो नीचे पहुंच ही नहीं पाती, एज इफ के ये बादल की तरह है ये जंगल। तो जन्नत जो है वो जन्नत की जमा है, और जन्नत का मतलब एक्चुअली बाग होता है, और यहाँ पर बाग से मुराद जो है वो जंगल, जिनको हम जंगल कह दिया करते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बाग होते हैं कि उनको खाली बाग का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए जंगल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन जंगल बेसिकली बड़ा बाग ही होता है। तो अल्लाह ताला ने उसी को जन्नातिन अल्फाफा फरमाया, ठीक है। तो यहाँ तक जो अल्लाह ताला शायद फरमा रहे थे वो सब जो था वो यानी ये दलील थी कि देखो कयामत का कायम करना मेरे लिए मुमकिन है, क्योंकि दुनिया में जो जो तुम ये चीज़ें देख रहे हो ना, तो इन्हीं चीज़ों को तुम यानी समझ नहीं सकते कि मैंने कैसे बनाया है, यानी मेरे लिए इन चीजों को बनाना कितना आसान था, तुम्हारे लिए तो यही चीजें इतनी अजीम है, इतनी बड़ी हैं, इतने बड़े बड़े जंगल, तुम उनको देख करके हैरान रह जाते हो। ठीक है, ये जो इतनी सब्जियां उगती हैं एक खेत के अंदर, बजाय देखें तो वो खेत आपको छोटा सा नजर आता है, लेकिन उस खेत से जितनी सब्जियां निकलती हैं वो कितने अरसे तक मार्केट में सप्लाई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो सब्जियां खत्म नहीं होती, हालांकि एक छोटा सा खेत होता है वो। ठीक है, तो फिर जो अल्लाह ताला ने पूरी जमीन के ऊपर खेत फैलाए हैं, तो उनसे तो कितना अनाज निकलता है, कितना जो है वो सब्जियां निकलती हैं। तो दुनिया के अंदर जो चीजें तुम्हारे लिए बहुत अजीम है, तो वो तो मैंने सारी की सारी बना करके तुम्हारे सामने रख दी है। ठीक है, तो जब मैं ये चीजें बना सकता हूँ, तुम इस बात को जानते हो और मानते हो कि मैं इन सब चीजों का खालिक हूं, तो फिर कयामत का कायम कर देना मेरे लिए क्या मुश्किल काम है, तो ऐन मुमकिन है मेरे लिए कयामत का कायम कर देना। तो ये सब कुछ जो है ना, उसी को फरमाया कि ये इम्कान का बयान था। ठीक है कि भाई मेरे लिए मुमकिन है। अब आगे क्या बयान है, आगे वुकू का बयान है। ठीक है कि जी जैसे कि अब कयामत जो है वो कायम हो चुकी, ठीक है, तो अब जब कयामत कायम हो चुकी तो उसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, वाकई हो चुकी कयामत, इन यौमल फसल का नमीकाता, अब जो है वो उस दिन की तफसीलात बयान कर रहे हैं कि बेशक यौमल फसल, कयामत का एक नाम यौमल फसल भी है, यानी फैसले का दिन। फैसले का मतलब होता है कि जुदा कर देना, हक को अलग कर देना, बातिल को अलग कर देना, सच्चे को अलग कर देना, झूठे को अलग कर देना, नेक को अलग कर देना, काफिर को अलग कर देना, इसको कहते हैं फसल करना। बीच में फसल पैदा कर दिया आपने, बीच में फसील पैदा कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इसी वजह से कयामत के दिन जो है वो चूंकि फसल पैदा करने का दिन है, कि उस दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे, फसल पैदा कर देंगे, पार्टीशनिंग कर देंगे, ठीक है, तो इस वजह से उसको यौमुल फसल कहा। तो बेशक जो फैसले का दिन है, काना मीकाता, वो एक मुकर्रर किया हुआ वक्त है, ठहरा हुआ वक्त है, मीकात डिफाइंड जगह है। मीकात का लफ्ज सऊदी अरब वाले अच्छी तरह वाकिफ हैं, और जो लोग हज उमरा करते रहते हैं तो माशाल्लाह उनको भी अच्छी वाकफियत है इस टर्म से, मीकात। ठीक है, जद्दा जो है वो एक मीकात है, ताइफ ये दूसरी मीकात है, यलमलम ये एक तीसरी मीकात है। ये मीकात क्या होती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने ये जगहें मुकर्रर कर दी कि इन जगहों पे जा करके तुम एहराम की नियत करो। ठीक है, इन जगहों पे जाके एहराम की नियत करो, इनसे आगे तुम बगैर एहराम के नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन जगहों को मीकात कहा। ये एहराम के मसले भी बड़े अजीब हैं। ठीक है, यानी मसले तो इतने अजीब नहीं है, लेकिन हमारी जो वाकफियत है ना इनसे बड़ी अजीब है। ठीक है, यानी अच्छे खासे दीनदार, पढ़े लिखे और खूब हज उमरे करने वाले, हम कभी कभी ऐसी अजीब गरीब किस्म की हरकतें कर जाते हैं जो कि जब पता लगता है ना कि किसी ने क्या किया तो फिर हैरानी होती है। मिसाल के तौर पर यानी बगैर एहराम के मीकात से गुजर जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने एहराम नहीं बांधा, बगैर एहराम की चला गया। भाई आपको किसने ये कहा कि आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं हो तो आप बगैर एहराम के आगे जा सकते हैं। ठीक है, किसी औरत को जो है वो अगर उसका मंथली साइकिल शुरू हो गया तो अब वो चूंकि एहराम की हालत में नहीं जा सकती, कोई बात नहीं कि बगैर एहराम के आगे चले जाओ। ठीक है, तो भाई ये ऐसे मसले नहीं है कि जिनके अंदर ना ऐसे जो है वो हम बगैर पूछे मुफ्ती हजरात से फतवा लिए बगैर हम ऐसे काम कर लिया करें। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान ही ऐसे लोग हैं जो कि बगैर पूछे ही जो है ना वो इस किस्म के बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो दम वाजिब हो जाता है, और कुछ तो बताने के बावजूद जो है वो दम वम भी कोई नहीं देते। ठीक है, ना तो वो कजा उमरा करते हैं ना वो दम देते हैं, तो फिर न जाने कौन सी वाली कैफियत के अंदर जिंदगी गुजर रही है, हालत हराम के अंदर ही जिंदगी गुजर रही है। अभी हराम या तो एहराम बांधा ही नहीं था तो उसकी वजह से दम वाजिब हो गया, या ये कि एहराम से निकलने के भी तरीके होते हैं, वो तरीके ही इख्तियार नहीं किए, ऐसे ही एहराम खोल दिया और नॉर्मल जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। तो भाई आप तो अभी तक हालत है अहराम में, तो फिर आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो आपके लिए जायज ही नहीं है। तो अब उनके लिए जो है वो दम दम देना होगा या कोई तरीका होगा ना, जिनायात वगैरह का सिलसिला अल्लाह ताला ने रखा है। तो इस वजह से ये जो मामलात हैं अगर ना पता हो तो पूछ लेना चाहिए। खैर, तो ये मीकात जो है वो मुकर्रर करदा वक्त को या मुकर्रर करदा जगह को कहते हैं। तो कयामत के दिन भी मुकर्रर करता है। हाँ अच्छा, बेशक फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है। यौमा युनफखु फिस्सूरी फतअतून अफवाजा, कि जिस दिन फूंकी जाएगी सूर फिर तुम चले आओगे जट जुट के जुट, यानी फौज की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में तुम चले आओगे जिस दिन सूर फूंकी जाएगी। तो इसकी तफसीर में हजरत ने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट्स में कि यानी हर उम्मत जुदा जुदा होगी, ठीक है, तो हर उम्मत के जो है वो अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे और फिर उसके अंदर भी मोमिन जुदा, काफिर जुदा, फिर अबरार जुदा, अशरार जुदा, ठीक है, यानी जो ईमान वाले थे वो अलग हो जाएंगे और काफिर अलग हो जाएंगे, फिर उनके दरमियान फर्दर पार्टीशनिंग होगी कि ईमान वालों में भी कुछ होते हैं ना जो कि ईमान तो है लेकिन बड़ी शरीर तबीयत वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको अलग कर दिया जाएगा और जो नेक तबीयत वाले लोग थे, नेकी करने वाले, तो उनको अलग कर दिया जाएगा। उसी तरह काफिरों के अंदर भी इस तरह की जो है वो पार्टीशनिंग वगैरह हो जाएगी कि जी बहुत बुरे काफिर जो है वो उनको अलग कर दिया जाएगा, जो कम बुरे काफिर थे उनको अलग कर दिया जाएगा, जो उनसे कम बुरे काफिर थे उनको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, सब एक दूसरे से मुमताज होकर मैदान कयामत में हाजिर होंगे। इसी वजह से ना इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टीशनिंग होगी कयामत के दिन कि उस दिन को जो है वो द डे ऑफ पार्टीशनिंग करार दे दिया, यौमुल फसल, द डे ऑफ पार्टीशनिंग, यौमुल फसल। वफुतिहत इस्समाउ फकानत अबवाबा, और खोला जाएगा आसमान पस वो बन जाएगा अबवाब, यानी आसमान के अंदर दरवाजे बन जाएंगे। अब यहां पर किस आसमान की बात हो रही है, क्योंकि अब तो कयामत के दिन कायम हो चुका है ना, अब हम इस दुनिया के अंदर तो नहीं है, क्योंकि ये जो यौम हशर कायम हो चुका है कयामत के दिन, तो उसके बारे में क्या पता लगता है कि ये दुनिया तो जहन्नुम बन जाएगी, ठीक है ना, तो अब जो जहन्नुम बन जाएगी तो फिर उसमें कोई थोड़ी लोग खड़े हुए होंगे, बल्कि एक और जगह होगी, एक और जमीन होगी, वहां पर सारे के सारे लोगों को खड़ा किया जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को अक्सर क्लासेस के अंदर बताते रहे हैं कि वो जो जमीन का टुकड़ा होगा वो या तो कोई बिल्कुल ही नया टुकड़ा होगा, या ये कि इसी जमीन यानी जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं इसी जमीन का एक टुकड़ा जो है, जैसे कि योम ये मैदान अराफात के बारे में आता है हदीस में, ठीक है, तो मैदान अराफात में सारे लोग जमा होंगे, तो ये जो मैदान अराफात है इसको अल्लाह ताला लगता है कि इस जमीन में से ना छील करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यानी बाकी सारी जमीन जहन्नुम बन गई। आपको पता है मस्जिदें जो हैं उनको भी निकाल लिया जाएगा, बैतुल्ला, सारी दुनिया की मस्जिदें बैतुल्ला में जम हो जाएंगी और बैतुल्ला को उठा लिया जाएगा, जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से लगता है कि जो मैदान अरफात है उसको भी ना पील आउट कर लिया जाएगा इस जमीन में से, ठीक है, और उस मैदान अरफात को चूंकि अब वो जो है वो एक खाल की तरह होगा, ठीक है, एक जैसे कि एक, एक, एक फर्श की तरह, उस फर्श को फिर खींच तान करके मिदादा इतना खींचा जाएगा, इतना उसको यानी चौड़ा और लंबा किया जाएगा कि जितने इंसान हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर समा जाएं, ठीक है, अब उसके ऊपर जो सारे के सारे समा गए तो ये अब इस अर्थ का तो मामला खत्म हो चुका है ना, तो अब ये एक डिफरेंट अर्थ के ऊपर है, ठीक है, उस अर्थ के ऊपर जो चीज होगी उसी को आसमान कहा, ठीक है, यानी वहां जो लोग सारे के सारे खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर जो भी कवरिंग वगैरह है वही उनका आसमान है, ठीक है, तो उस आसमान में फिर अबवाब बना दिए जाएंगे, ठीक है, जो यानी दरवाजे बना दिए जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आखिरी वक्त खाने काबा को शहीद कर दिया जाएगा, खाने काबा को शहीद कर देने का मतलब ये होता है कि उसकी इमारत को शहीद कर दिया जाएगा, ठीक है ना, खाने काबा एक इमारत का नाम नहीं है, वरना इमारतें तो पहले भी कई दफा टूट चुकी हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में वो इमारत थी ही नहीं, हालांकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से इमारत बनवा दी थी, फिर वो इमारत कब खत्म हो गई, तूफान नूह में खत्म हो गई, यही लिखा हुआ है किताब में, तूफान नूह में वो इमारत भी टूट गई, तो इमारत फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ बनाई, फिर उसके बाद जो है वो कितनी दफा ये हो चुका है, कम अज कम 5 दफा आता है ना कि काबतुल्ला की इमारत को गिरा करके, तो मस्जिदों को कैसे जम किया जाएगा, मस्जिदें जो है ये भी इमारत का नाम नहीं है,
यानी मस्जिद जो होती है वो उस जगह का नाम होती है, ठीक है, जहां पर के जिसको के यानी उम्मत के लोगों ने डेजिग्नेट कर दिया हो अल्लाह की इबादत के लिए, उस जमीन के कतरे को मस्जिद कहा जाता है, ठीक है ना। तो काबतुल्ला भी जो है वो जमीन का एक कतरा है, इमारत नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो गिलाफ काबा नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें कतरे के ऊपर जो अल्लाह ताला की तजल्लियात नाजिल होती है ना, उन तजल्लियात का असर जो है वो पत्थरों पर भी पड़ता है, कपड़े पर भी पड़ता है। इसी वजह से तो जो काबतुल्ला के पत्थर और कपड़े वगैरह जो है वो अगर किसी के हाथ लग जाए तो फिर हम कितना उसको आंखों से लगाते हैं और अपने घर के अंदर जो है वो लगते हैं, हालांकि वो काबतुल्ला नहीं है, ठीक है। तो जमीन के जो पैचेस है ना, मस्जिदों वाले पैचेस, वो पैचेस जो है वो सारे के सारे यानी मूव करेंगे काबतुल्ला की तरफ, ठीक है, और फिर काबतुल्ला का जो जगह है उसके अंदर आकर के सारे मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैदान हशर होगा, उस मैदान हशर के ऊपर जो भी चीज होगी वो आसमान होगा, ठीक। तो उस आसमान के अंदर दरवाजे बना दिए जाएंगे। अच्छा, यानी इस कदर बहुत सा खुल जाएगा जैसे बहुत से दरवाजे मिलाकर बहुत बड़ी जगह खुली होती है, ठीक है, यानी एक ओपनिंग सी बन जाएगी, और फिर उस ओपनिंग में आपको पता है कि फिर फरिश्ते नाजिल वगैरह होने शुरू होंगे। बस कलाम मबनी है तशबीह पर, ठीक है ना, यानी ये एक मुतशाबहात वाली वाला मुकाम है कि जिसकी एग्जैक्ट हकीकत हमें नहीं पता कि कैसी होगी वो, ठीक है, इसी वजह से ये जो कलाम है उसको तशबीह कहा। अब ये शुबो नहीं हो सकता कि दरवाजे तो आसमान में अब भी हैं, फिर उस दिन दरवाजे होने की क्या मानी, ठीक है, और ये खुलना नुजूल मलाइका के लिए होगा, यानी आज जो आसमान में दरवाजे हैं मतलब ये कि आसमान को ही जो हम अभी जो आसमान दुनिया देखते हैं तो इस आसमान दुनिया तो खुली हुई है ना, यानी आप जब एक रॉकेट को ऊपर लॉन्च करते हैं तो रॉकेट तो कहीं थोड़ी होता है कि रुक जाए कहीं पे, फिर दरवाजा खोले, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, तो अभी भी आसमान दुनिया खुला हुई है, लेकिन उस वक्त जो है वो किस तरह से खुला होगा तो अल्लाह आलम, ठीक है। तो उस वक्त लगता ऐसा है कि सम सोर्ट ऑफ चादर होगी ऊपर, और उसके अंदर से जो है ना वो फिर एक फटान सी या एक खुला खुलापन जो है वो क्रिएट होगा, और ये खुलना नुजूले मलाइका के लिए होगा, मलाइका नाजिल होना शुरू होंगे, जैसे सूरह फुरकान में यौम तशक्कुक समाओ वाली जो आयत है उससे ताबीर फरमाया है और उसकी शरह वहां पर गुजर चुकी है, ठीक है। अच्छा, और पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे, अच्छा, सो वो रेत की तरह हो जाएंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, ठीक है, यानी पहाड़ जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कयामत के दिन में जलजला आएगा तो उस जलजले से ये सारे के सारे जो मेखें पहाड़ जो मेखों की तरह से गड़े हुए हैं ना, तो जमीन फट जाएगी और ये मेखें जो है ना ये यानी अपनी जगहों से हिल जाएंगी, और हिलने के मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपनी जगहों पर ही हिलती रहेंगी, बल्कि हिलते 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 इतना हिलेंगी कि गोया कि ये यानी लुढ़कना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, पहाड़ लुढ़कना शुरू हो जाएंगे, और लुढ़कते लुढ़कते जो है फिर ये टूटना शुरू हो जाएंगे, और टूटते टूटते पहले तो छोटे पत्थरों में टूटेंगे, फिर टूटते टूटते ये रेत की तरह, रेत के जर्रों की शक्ल में टूट जाएंगे, और रेत की जर्रों की शक्ल के बाद मजीद और इनको जो है वो यानी ग्राइंड किया जाएगा, हत्ता कि ये रुई के गालों की तरह से उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य सूर्य वसूर्य रतन जुबान फकानत सराबा, अच्छा क्या मंजर होगा उस दिन, जी कौल ही ताला कसीबम महीला, और ये वाकयात नफ़खे सानिया के वक्त होंगे, अलबत्ता तस्वीर जबाल में यहाँ भी और जहाँ जहाँ वाक़ हुआ है दोनों एहतमाल हैं, ठीक है। यानी ये जो वाकयात है ना पीछे वाले फुतिहत समाउ फकानत अबवाबा, यहाँ तक जो वाकयात हैं ये तो नफ़खे सानिया के वक्त के हैं, दूसरी दफ़ा जब सूर फूंका जाएगा, लेकिन ये जो पहाड़ों का चलाना है तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि तस्यीरिल जिबाल यानी पहाड़ों का चलाना में यहां भी और जहां जहां वाकई हुआ है دونوں احتمال ہیں، یا تو نفخ ثانیہ کے بعد کہ اس سے عالم کی سب چیزیں اپنی حیت پر عود کر آئیں گی، جب حساب کا وقت آئے گا پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا تاکہ زمین پر کوئی آڑ پہاڑ نہ رہے، سب ایک ہی میدان میں نظر آئیں، اور یا یہ نفخ اولا کا وقت ہوگا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو پہاڑوں کے چلانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ریت کی طرح بنا دیا جائے گا چلا چلا کر کے، تو اگر ہم کہیں کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد کا ذکر ہے، تو پھر کس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میدان عرفات کو نکالا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے، تو میدان عرفات میں بھی تو پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں پر جیسے یہ جبل رحمت ہے وہ ایک پہاڑ وہاں موجود ہے، پھر اس کے علاوہ اونچ نیچ کے ٹھیک ہے جو چیزیں موجود ہیں وہاں پر، تو ان سب کو جو ہے وہ لیول کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پہاڑوں کو جو ہے وہ ریت کی طرح سے کر کے پھر وہ لیول ہو جائیں گی تاکہ سارے انسان جو ہے وہ ایک لیول کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور بیچ میں کوئی آڑ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسپلینیشن ہوئی نفخ ثانیہ کے بعد والی ایکسپلینیشن، اور نفخ اولا کے بعد والی ایکسپلینیشن کیا ہوگی کہ وہی جو ابھی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے وہ سب کے سب روئی کے گالوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ تو یا یہ نفخ اولا کا وقت ہوگا جس سے خود فنا کرنا مقصود بذات ہوگا، پھر اس تقدیر پر یوم کو ان سب واقعات کا ظرف فرمانا اس بنا پر ہوگا کہ نفخ اولا سے نفخ ثانیہ تک کا مجموعہ ایک یوم قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، بیکاز یہ جو بات شروع کری تھی اللہ تعالیٰ نے تو وہ یوم ينفخ في الصور سے شروع کری تھی نا، تو یوم جو ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سب مضاف الیہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایک ہی دن میں یہ سارا کام ہو جائے گا۔ تو اگر پہاڑوں کا جو چلانا ہے وہ نفخ ثانیہ کے بعد ہو رہا ہے، اگر نفخ ثانیہ کے بعد ہو رہا ہے تو پھر ایک دن کیسے کہلائے گا یہ؟ تو وہ ایک دن اس طرح سے کہلائے گا کہ بھئی جب پہلی سور پھونکی گئی ہے نا اس وقت سے لے کر کے دوسری سور پھونکنے کے بعد تک یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک ہی وقت ایک ہی دن قرار دے دیا، ٹھیک ہے، سب کا سب ایک ہی دن قرار دے دیا۔ کیا اسلامی ممالک کا مقام بھی مساجد جیسا ہے تقدس کے ریفرنس میں؟ نہیں، یہ آپ کو یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو وہ بات ہے نا وہ کوئی پتھر پر لکیر کوئی تھوڑی ہوتی ہے، یہ جو پاکستان جو ہے وہ مسجد کی طرح ہے، انہوں نے ایک تمثیل دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ جو ان کا گمان تھا، ویسے تو آج کل دوسرے ان کی دوسری باتیں جو ہیں وہ زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، پاکستان کے بارے میں انہوں نے پیشن گوئیاں کری تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب مسجد بن گئی نا تو اب اس کے بعد سارے محلے کے لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ اس میں مسجد کا تقدس کریں۔ غالباً مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ بات تھی یا وہ حضرت حسین احمد مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات تھی کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایسا فرمایا تھا، لیکن ان کی بات کہہ دینا یہ ایک تمثیل کے درجے میں تھا خالی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری کی پوری مسجد بن گیا۔ اچھا، واللہ اعلم، آگے اس یوم الفصل میں جو فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے، یعنی اب جو ہے وہ فیصلے وغیرہ کی تفصیلات ڈسکس کی جا رہی ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کہ بے شک جو جہنم ہے وہ مرصاد کی طرح ہے یعنی تاک میں ہے، اور طاغین مآبا یعنی جو بغاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، شریر، انتہائی شریر درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ٹھکانہ ہے یہ جہنم مآبا، اور لابثین فیہا احقابا، یہ اس کے اندر احقاب تک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ظاہر ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، بکاز ابھی ٹائم اوور ہو چکا ہے، تو کسی کو اگر کوئی اور سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں۔ ٹھیک، چلے، بہتر، اجازت ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔